أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين قابل التوب غافر الذنب هو التواب الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات فرض محمد وآل محمد کی ذات پہ صلی اللہ محمد وآل محمد برادران عزیز جس طریقے سے ہم نے کل عرض کیا کہ گفتگو کی ابتدا میں پہلے مل کر اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آئیے مل کر دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں مل کر میرے ساتھ پڑھیے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدم ما بقیتو وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین عزیزان محترم حضرداران مظلوم کربلا خود اس سلام کے اندر ایک جملہ ہے آپ جانتے ہیں زیارت عاشور سے ماخوذ یہ سلام ہے جس کے اندر ایک جملہ ہے کہ جس کے اندر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ بارِ الٰہی اس سلام کو جو میں نے ابھی حسین پر بھیجا ہے میرا آخری سلام قرار نہ دینا علماء اہل دل عرفا بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب بھی مولا کی یاد آئے جب بھی حسین کا خیال دل میں آئے تو حسین کو یاد کر کے کہا کرو السلام علیک یا ابا عبداللہ کیونکہ انسان کو معلوم نہیں یہ فرصت کب تک ہے اس کے پاس یہ سانسیں کب تک ہے ممکن ہے کہ ایک وقت آئے تو اس وقت انسان کے دل میں حسرت رہ جائے کاش ایک دفعہ یا حسین اور کہا ہوتا پروردگار عالم کا احسان ہے خداوند منان کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ حسین کے عزاداروں میں شامل ہو سکیں بہترین فرصت ہے یہ مہینہ یہ ایام کہ جس طریقے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی सरयू सैर यानी बहुत ही तेज़ी से क़ुर्ब की मनाजिल को तय करना चाहता है और अल्लाह की बारगाह में तेज़ी से पहुंचना चाहता है, इन क़ुर्ब की मंजिलों को पाना चाहता है, तो मुहर्रम बेहतरीन फुर्सत है। हुसैन अल्लाह की रहमत के बाब वासिया है। हमारी रिवायात के अंदर है और मुतअद्दिद रिवायात में और हमारी दीन की जो ज़बान है उसके अंदर यह बात वाज़े है कि अगर हम इस्लाम की निगाहों से देखें, दीन की निगाहों से देखें, तो मकान और ज़मान दोनों अपने अंदर असरार के हामिल हैं। यानी मकान जो है, जगह जो है, वो भी अपने अंदर असरार रखती है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो, अगर मादी निगाहों से देखा जाए तो हर जगह एक ही जैसी है, मादे के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब दीन की नज़र से देखते हैं तो दीन ये बताता है कि देखो, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बगैर हिसाब किताब के नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि किसी जगह पर काबा बना दिया गया, ऐसे ही नहीं है कि किसी जगह पर मस्जिद बन गई। रिवायात के अंदर है कि किसी जगह पर कोई मस्जिद तामीर नहीं होती मगर वहां पर किसी औलियाए खुदा का खून मौजूद होता है। अलबत्ता मलाइका नकाल भी हैं, वो खून के जो कहीं बहाया जाए उसको मलाइका नकल करते हैं, कहीं लेकर आते हैं, लेकिन बहरहाल असरार हर जगह एक जैसी नहीं है। कि अल इस्तिजाबतु फी तहत कुब्बे ही, कि अगर हुसैन के कुब्बे के नीचे आ जाओ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुआ मकबूल है। हर जगह पर वली खुदा दफन नहीं होता, ये भी रिवायत के अंदर है कि अगर कोई मासूम किसी जमीन के अंदर दफन हुआ है तो ये जमीन पहले से इंतखाब शुदा है। मगर बारह हमने मसाइब में नहीं सुना कि जिस वक्त मौला कायनात से शुरू करते हैं कि जिस वक्त मौला के जनाजे को लेकर गए, जब वहाँ पे गए तो देखा कि एक ज़मीन आमादा है, कब्र पहले से आमादा है। इसी तरीके से जब इमाम सज्जाद आए तो एक एक जगह आपने मुशख्खस की कि कहाँ पर किसको दफनाया जाएगा। हर ज़मीन में ये लियाकत नहीं है कि वो मासूम को अपने अंदर समा सके, तो वो जमीन के जिसके ऊपर कोई मासियत इलाही ना हो, खुदा उस जमीन को मुंतखब करता है अपने वली के लिए। हो सकता है कोई बराबर में आस पास आ जाए, लेकिन वो जगह के जहां पर मासूम मौजूद है वो जगह ऐसी है कि जहां पर कोई मासियत इलाही नहीं हुई। जिस तरीके से मकान असरार के हामिल है, इसी तरीके से जमाने के अंदर भी असरार है। अगर सूरज की गर्दिश और ज़मीन की गर्दिश के एतबार से देखें, चाँद की गर्दिश, अगर इन अजसाम की गर्दिश के एतबार से अगर देखा जाए तो फ़र्क नहीं है। ये एक अल्लाह ने एक तरीके से एक साइकिल बनाई है, अल्लाह ने इस तरीके से एक निज़ाम बनाया है, इस गर्दिश का निज़ाम, इस दिन में और उस दिन में कोई फ़र्क नहीं है अगर इस नज़र से देखा जाए। और इसीलिए बात जगह पर वो लोग जो इनकी निगाहें फकत मादे तक महदूद रहती हैं, इन बातों को हजम नहीं कर पाते। लेकिन जब दीन की नज़र से देखते हैं तो दीन ये कहता है कि हर दिन बराबर नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन अब इस वक्त आलम के अंदर फर्क आ चुका है। जब माह मुबारक का महीना आता है, माह रमजान, तो जो खुतबा शाबानिया है, जो मशहूर पैगम्बर अकरम से खुतबा है कि जिसके आखिर में आपने मौला की शहादत की बशारत दी थी, और अजीब बरल यहाँ तक आ गया तो कह दो जुमला का अजीब अंदाज था कि जब मौला ने, रसूल खुदा ने तमाम बातें बताई माह रमजान के हवाले से, और अली सामने बैठे हुए थे, अली के चेहरे को देखा और एक दफ़ा आंखों से आंसू जारी हुए। मौला कायनात ने सवाल किया, रसूल अल्लाह किस बात ने आपको रुला दिया? कहा कि अली, मैं देख रहा हूँ कि यही महीना होगा और तुम्हारी ये दाढ़ी तुम्हारे खून से तर होगी। मौला कायनात ने पलट कर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, یہ بتائیں کہ اس وقت کیا میں دین کے اوپر ہوں گا؟ کہا کہ ہاں علی تم دین کے اوپر کیوں نہیں ہو گئے، تم تو اگر اپنی زبان میں کہیں تم تو کل ایمان ہو۔ تو اس کے بعد میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ نے سوال کیا تھا کہ علی تمہارا صبر کیسا ہوگا، اس وقت تو فرمایا کہ رسول اللہ وہ صبر کا نہیں بلکہ شکر کا موقع ہوگا۔ لیکن اسی خطبے کے اندر جب خطبہ شروع ہوا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ خطبہ کون، یہ مہینہ کون سا ہے جو آ رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ مہینہ وہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تمہاری سانس لینا تسبیح ہے۔ سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، اگر انسان خواب میں بھی ہو سو بھی جائے تو سانس لیتا رہتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر کیا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارے سانس لینا اس کے اندر عبادت ہے۔ وہ نومک تسبیح ہے، وہ نومکم فیہ عبادت، اور تمہارا سونا عبادت ہے۔ اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھے تو اس مہینے میں اور پچھلے مہینے میں کیا فرق ہے، لیکن جب دین کی نظر سے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہے ظاہری طور پر نہ سمجھ پائیں، لیکن اس مہینے میں کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے مومنین کے سونے کو اس مہینے کے اندر عبادت قرار دیا ہے۔ سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ماہ محرم ہے، یہ بھی ہر مہینے سے مختلف ہے۔ اگر محرم، اگر رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو محرم ولایت کا مہینہ ہے۔ چونکہ زمان اسرار کے حامل ہیں، اسی لیے کہا کہ ہر زمانے کا ایک رزق خاص ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسی زمانے کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ پیغمبر اکرم نے بی بی سے فرمایا، ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات پر، پیغمبر نے بی بی سے فرمایا کہ دیکھو روز جمعہ غروب سے پہلے ایک ایسا وقت ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وقت وہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک یہ سورج مکمل غروب نہیں ہو جاتا، یہ وہ وقت ہے کہ جو اجابت کے لیے، یعنی یہاں پر دعا کے قبول ہونے کے لیے خاص تاثیر کا حامل ہے۔ یعنی یہ جو دعا کی قبولیت ہے، یہ اس وقت کا رزق خاص ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ رمضان کا رزق خاص کیا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت۔ اسی طرح سے علماء نے بیان کیا کہ محرم اپنے اندر اسرار کا مہینہ ہے، اور اس محرم کا جو رزق خاص ہے وہ یہ آنسو ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر سانس لینا تسبیح ہے، اسی طریقے سے حسین کے غم میں فقط ایک غم بھری آہ لینا عبادت ہے۔ جو ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ عالم اپنے اندر تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قلب عالم ہے وہ مغموم ہے، زمانے کے امام غمگین ہیں۔ اس لیے انسان محسوس بھی کرتا ہے اس مہینے کے اندر اس خاص غم کو، اس غم کی کیفیت کو۔ اس کا رزق خاص جو ہے وہ یہ آنسو ہیں کہ جو انسان کو سب سے پہلے خود امام حسین علیہ السلام سے، اور اس کے بعد امام کے وسیلے سے تمام ائمہ سے منسلک کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو جو ہیں، دیکھیں آنسو جذبات کے اظہار کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ انسان اپنے جذبات کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، لیکن وہ جو سب سے قوی اظہار ہے، कि जब इंसान सबसे ज्यादा किसी चीज से मुतासर होता है तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, और ये आंसू इंसान को हुसैन से मुत्तसिल कर देते हैं। कि उसके बाद अगर वही जुमला जो मैं कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि उसके बाद अगर इंसान अपने सिद्क दिल से कहे कि या सैयदी या मौला ये मेरे मौला है मेरे आका अदखिलनी फी हिस्बिक व ज़ुमरतिक, मौला मुझे भी अपने लश्कर में शामिल कर लीजिए। यह रिस्क़ खास है इस महीने का, ये कोई मामूली चीज नहीं है। देखिए मुहर्रम जो है, कल मुझसे यहाँ पर अर्ज किया था और मुझसे कई लोगों ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो इसको थोड़ा सा एक चंद जुमलों में इसको वाज़े कर कर आगे बढ़िए। देखिए आशूर जो है ये हम सब जानते हैं और बारहा हमने सुना है कि पूरी तारीख बशरियत में हक़ व बातिल का सबसे बड़ा मार्का है। पूरी तारीख इंसानियत में सबसे बड़ा हक व बातिल का मार्का करबला है। ये एक ऐसा वाकया है कि जिसके बाद जिसका समर जो है वो जहूर है। यानी अगर जहूर होना है और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत को कायम होना है तो उसके लिए वाकई करबला की जरूरत है। और इन दोनों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा एक साथ देखा, आशूर को और जहूर को। और उससे भी अगर बढ़कर बात करें तो परवरदिगारे आलम ने जब इमाम की शहादत की खबर दी तो फौरन ही उसके साथ जहूर की भी खबर दी। मुतअद्दिद रिवायतें हैं इस सिलसिले में। एक रिवायत वो है कि जब पैगंबर अकरम जब मेराज पर तशरीफ ले गए और वहां पर परवरदिगारे आलम ने पैगंबर को यह कहा कि अल्लाह आपको तीन चीजों से आजमाएगा ताकि देखे कि आपका सब्र कैसा है, तो उसके अंदर एक चीज यही थी कि आपके बाद आपकी इतरत के ऊपर आपकी आल के ऊपर जुल्म किया जाएगा। बीबी के वाकये का तस्करा, मौलाए कायनात की तन्हाई और गुरबत का तस्करा, और उसके बाद फिर इमाम हुसैन तक जब पहुंचते हैं तो उसके बाद परवरदिगार फरमाता है कि उसके बाद खुदा उसी हुसैन की जुर्रियत से एक शख्स को लेकर आएगा कि जिसके जरिए से अल्लाह इसका इंतकाम लेगा। यानी जब भी इस वाकये की खबर दी गई है तो जहूर का तस्करा किया गया है। यानी आशूर की जो असल हैसियत है, यानी आशूर का जो मकाम है वो यह है कि इस आशूर ने इस दुनिया को जहूर के लिए आमादा करना है। इस बात पर गौर की जरूरत है। देखें अलबत्ता बात बहुत मुश्किल नहीं है। पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने सबसे आखिरी नबी के तौर पर भेजा। हजरत आदम से अंबिया का तस्करा, अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। 1,24,000 तो कम कुल जो अंबिया भेजे उसके अंदर आखिरी नबी आपको बनाकर भेजा। अब यहां पर अगर कोई सवाल करे कि ये जो कामिल तरीन शरीयत थी अल्लाह ने इसको सबसे आखिर में क्यों भेजा, क्या नाउज़ुबिल्लाह किस तरीके से था कि अल्लाह के इल्म के अंदर भी तरक्की थी, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का भी नाउज़ुबिल्लाह इल्म बढ़ता गया, अल्लाह का तजुर्बा बढ़ता गया, तो अल्लाह ने उसके बाद जो दूसरी शरीयत नाजिल करी वो कामिल तर थी, उसके बाद जो शरीयत भेजी वो उससे कामिल तर थी, और उसके बाद जब अपने कमाल तक खुदा का नाउज़ुबिल्लाह इल्म पहुंचा तो अल्लाह ने कामिल तरीन शरीयत को भेजा। ऐसा है बताइए, ऐसा है? यकीनन ऐसा नहीं है। तो परवरदिगार आलम ने उस कामिल तरीन पैगंबर और कामिल तरीन शरीयत को सबसे आखिर में क्यों भेजा? उसकी वजह यह है कि अभी बशरियत अपने बुलूग तक नहीं पहुंची थी, अभी इंसान अपने रुश्द के उस मरहले तक नहीं पहुंचा था कि इस कामिल शरीयत को कबूल कर सके। इसलिए परवरदिगार आलम ने बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे क्लासों में एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, अल्लाह ने इस बशरियत को एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचाया, यहां तक कि बशरियत इस मकाम तक पहुंची कि इस पैगाम को कबूल कर सके। यानी बशरियत को उस बुलूग के मरहले तक पहुंचना था ताकि वहां पर बशरियत इस काबिल हो सके, इंसान इस लायक हो सके कि वो कबूल कर सके इस पैगाम को। इसी तरीके से देखें ये जो जहूर है, वो जो हम दुआए सलामती है इमाम जमाना पढ़ते हैं, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का एक सलवात पढ़ते हैं इमाम के जात पर, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिउ फीहा तवीला, कि परवरदिगार उन्हें जमीन पर भेज, जमीन के ऊपर उन्हें सुकूनत अता कर इस तरीके से कि जमीन रगबत के साथ उनको कबूल करे। यानी फहमे बशरियत यहां तक पहुंचे, इंसान इस मंजिल तक पहुंचे कि इस बात को दर्क कर सके कि अगर जीने की कोई वक़्त है तो वो फकत इमाम जमाना के साहे में है। यानी अगर जमाने का इमाम नहीं है तो जिंदगी जीने के काबिल नहीं है। बशरियत इस फहम तक, इस बुलूग तक पहुंचे कि ये जिंदगी इमाम के बगैर जिंदगी कहलाने के लायक नहीं है, और वहां तक पहुंचे। देखे, और ये करबला ने यहां तक पहुंचाना है, ये आशूर ने यहां तक पहुंचाना है कि वो जो इमाम ने जिस तरीके से कहा था कि आला तरौना अन्नल हक्का ला युअमलु बे व अन्नल बातिला ला युतनाहा अन्हु, क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा। फलयरगबिल मोमिन लिखा अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो मोमिन जिंदा रहना गवारा नहीं करता बल्कि अल्लाह से मुलाकात की आरजू करता है। जो इमाम ने कहा था कि मैं जालिमों के साथ जिंदा रहने को आर समझता हूं, नंग समझता हूं, ये शऊर वहां तक पहुंचे कि ये सारा जमाना हम नवा होकर कहे कि जुल्म के साथ जिंदगी गुजारने को हम आर समझते हैं, बारे इलाहा उसे भेज दे जिसे जमीन के ऊपर आदल नाफिस करना है। करबला ने वहां तक पहुंचाना है, शऊर की मंजिलों को करबला ने बढ़ाना है। इमाम हुसैन ने करबला में इस काफिले का आगाज किया है, इस सफर का इमाम हुसैन ने करबला के अंदर आगाज किया है, और खुद इमाम ने फरमाया है कि ला तस्कुनो दमी, उस वक्त के जिस वक्त इमाम आखिरी रुख्सत के लिए आए हैं। लेकिन ये बातें जब शुरू होती हैं तो इंसान का दिल मुनकलिब हो जाता है और इंसान फिर जो है वो मसाइब के बाप में चला जाता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जो है वो समझने की कोशिश करें। जब इमाम आखिरी रुख्सत के लिए आए हैं तो इमाम ने अपने बेटे के शाने को हिलाकर ये चंद जुमले कहे हैं कि जिसके अंदर एक जुमला ये है कि इमाम ने फरमाया कि अपने बेटे से कि ला तस्कुनो दमी, ए मेरे लाल अली इस बात को जान लो और समझ लो कि इसके बाद ला तस्कुनो दमी, अब आशूर के बाद मेरा खून सुकून से नहीं बैठेगा। ये जो खून जो आज बह रहा है, इस असर तक जो ये खून बह रहा है, ला तस्कुनो दमी, अब ये खून जो है वो सुकून से नहीं बैठेगा। कब तक? हत्ता यब असल्लाहुल महदी, यहां तक कि अल्लाह मेहदी को मबूस करते हैं। अब इस खून से तमाम इनकलाब इस खून के जरिए से आएंगे। अब यह खून इंसान को पुकारेगा, जहां कहीं पर भी जुल्म होगा हुसैन की आवाज सुनाई देगी। आज जिस तरीके से जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर, खासतौर पर फिलिस्तीन के अंदर, अगर सारी दुनिया वाकया ने इंसाफ से देखे तो ये नजर आएगा कि वही तड़पे हैं और वही निकले हैं कि जो हुसैन के ऊपर क्रिया करने वाले हैं। मौला हमने जो कहा था कि ना या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा माअकुम, आज उसके वफा करने का वक्त है। वही निकले हैं कि जो हुसैन के मानने वाले हैं, जो हुसैन के चाहने वाले हैं, क्योंकि हुसैन का चाहने वाला जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां कहीं भी जुल्म होता है उसे करबला नजर आती है। आज बच्चे भूख से मर रहे हैं, खाने की किल्लत से मर रहे हैं। जो हुसैन का चाहने वाला है ना, जब वो किसी बच्चे को भूखा और प्यासा देखता है तो उसका दिल तड़प जाता है और उसे हुसैन का शिशमा याद आता है। और ये बराबरी जो कहा जाता है कि देखिए किसका तस्किरा कहां किसको मिला रहा है, ना किसी को किसी से मिलाया जा रहा है, ना मकाम का ना मर्तबे के अंदर बराबरी है। ये हुसैन से वफा का तकाजा है कि जहां कहीं जुल्म देखो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। ये हुसैन से मोहब्बत का तकाजा है। बस आशूर के अंदर इमाम ने यह कदम बढ़ाया और अब यह कदम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और यही पैगाम हमें मुख्तलिफ ज्यारतों के अंदर दिया गया। वो जो सलवात मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज की थी जिसके अंदर यह जुमला था कि मौला आप मुझे अपने लश्कर में शामिल कर लें, इसी के अंदर परवरदिगार आलम को इस तरीके से कहा गया कि बारे इलाहा फसल्ले अला सैयदी व मौलाया, बारे इला मेरे आका और मौला के ऊपर सलवात भेज, ऐसी सलवात के तरफ़ाउ बेहा ज़िक्रा कि जिसके ज़रिए से मेरे मौला के ज़िक्र को और बुलंद करते हैं, व तुज़हिरु बेहा अमरा और उनके अम्र को ज़ाहिर कर दे, व तुअज्जिलु बिही नसरा और जिसके ज़रिए से उनकी नुसरत के अंदर ताजील कर दे, उनकी नुसरत में उजलत कर दे, जल्दी कर दे। देखिए ये जो सलवात जो इमाम के ऊपर भेजी जा रही है, अगर करबला ख़त्म हो गई होती 61 हिजरी के अंदर तो फिर ये कहना कि उनके अम्र को जाहिर करना हुसैन की नुसरत के अंदर बारे इलाहा इस सलवात के जरिए से मेरे मौला की नुसरत फरमा, इस नुसरत में ताजील कर, ये चीज़ें माना नहीं रखती। बस दो जुमले और मैं इस बात मंजिल से आगे बढ़ जाऊं कि देखें बस असली जो जिम्मेदारी है जो करबला की वो ये है कि दुनिया को जहूर के लिए आमादा करना, लोगों को जहूर के लिए आमादा करना कि शऊर इस मंजिल तक पहुंचे कि लोग जो हैं वो इमाम हुसैन के गाम बगाम उस मंजिल तक पहुंचे कि जिसके बाद बगैर इमाम वक्त के साई में बगैर अल्लाह की हाकिमियत के जिंदगी गुजारना अपने लिए नंगो आर समझें। इसलिए हमारी रिवायात के अंदर है कि जिस वक्त इमाम आएंगे और अपना तारुफ कराएंगे, चार या पांच जुमले नकल हुए हैं कि जिस तरीके से इमाम अपना तारुफ करवाएंगे, इनमें से तीन जुमले वो हैं कि जिसमें इमाम वक्त इमाम हुसैन के जरिए से अपना तारुफ करवाएंगे। या अहल आलम, जब मेरे मौला आएंगे और रिवायत के अंदर है कि रुकन और मकाम के दरमियान जब वो काबे में खड़े होंगे दुनिया को मुखातिब करके कहेंगे या अहल आलम, ए अहले दुनिया जान लो मैं कौन हूँ। फरमाएंगे कि मैं वह हूँ इन्ना जद्दी अल हुसैन कद कतलू हो अतशाना, कि मैं वो हूँ कि जिसके जद हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। यानी इतना दुनिया के अंदर इमाम का तारुफ बढ़ चुका होगा। पर इस अरबईन से पहले ये जो अरबईन का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, इस अरबईन की मूवमेंट से पहले अगर कोई कहता तो ये बात शायद समझना मुश्किल होती, लेकिन अब जिस तरीके से हुसैन आलम पर छाता जा रहा है ये बात वाजे है कि क्यों मेरे मौला आकर इस तरह से तारुफ करवाएंगे। या अहल आलम, मैं वो हूं कि जिसके जद हुसैन को प्यासा शहीद किया गया। बस अजीजान इस मरहले से अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए हुसैन दाई इलल्लाह है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। छठे इमाम से रिवायत है कि जिस वक्त मौला के रोज़े पे जाओ तो छः या सातवां पढ़ दें एक दफ़ा बाबाज़ बुलंद मौला की ज़ात पे। जाओ तो छः या सात दफ़ा भी मेरे हाफ़ज़ा मेरा साथ नहीं दे रहा, शायद सात दफ़ा है। जब वहाँ पे ज़री के नज़दीक पहुँचो तो कहो लब्बई का दाई अल्लाह। और ज़्यादा तरह जबिया के अंदर भी यही जुमला है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मैं लब्बैक कहने के लिए आया हूँ, लब्बैक का दाई अल्लाह। इस बात को कि किस तरीके से इमाम ने खुद आशूर के अंदर आशूर से पहले अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अल्लाह की तरफ बुलाया, इंशाअल्लाह आने वाली मजलिसों में इसकी तरफ इशारा करेंगे। लेकिन आज इस मरहले से पहले बतौर कुल्ली मैं ये चाहता हूँ कि इमामत और तौहीद के रब्त पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, क्योंकि उसी वक्त ये दाई अल्लाह होना, अल्लाह की तरफ बुलाया बुलाने वाला होना उस वक्त समझ में आएगा कि जब पहले कुल्ली तौर पर इमामत और तौहीद के दरमियान रब्त समझ में आए। लेकिन ये जो बात दफा कहा जाता है कि हमारा जो बरादरान अहले सुन्नत से इख्तलाफ है, जो कि है अलबत्त हम दाई वहदत मुस्लिमीन हैं, हम मुसलमानों के इत्तेहाद के कायल हैं, हम हमारे मराजे की ज़बान के मुताबिक हम अहले सुन्नत को अपने नफ्स अपनी जान मानते हैं, लेकिन इल्मी तौर से बहरहाल जो इख्तलाफ़ है उसे पेश करते हैं कि फ़र्क कहाँ पर है। ये अगर कहा जाता है कि देखिए फ़र्क तरतीब का नहीं है, खाली ऐसा नहीं है कि किसी ने पहला मान लिया और किसी ने चौथा माना, कि तरतीब का फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है खिलाफत का वो बिल्कुल मुख्तलिफ उससे है कि जो हमसे हमारे यहाँ पाया जाता है। दर हकीकत जो फ़र्क है वो खिलाफत के तसव्वुर का फ़र्क है, वरना अगर खाली इसी तरतीब को नज़र में रखा जाए तो अहले बैत को छोड़ दें। मौले कायनात के एक सहाबी हैं सासा इब्ने सोहान, और बहुत ही करीबी मौला के साथी हैं, और उनकी फसाहत और बलागत का आलम यह है, उसकी सनद यह है कि मौला कभी कभी खुद बैठे होते थे और सासा इब्ने सोहान से कहते थे कि जाओ तुम जाकर तकरीर करो। अगर इस फर्क को नजर में रखें तो देखें, यानी वो जो रिवायात में अगर उसको छोड़ भी दें तो सासा इब्ने सोहान से चंद जुमले हैं जो इंतहाई खूबसूरत है कि जिस वक्त ये जाहिरी तौर पर ये जो जाहिरी खिलाफत जब मौला के पास पहुंची है तो सासा ने जब बैत की है तो उसके बाद कहा है या अमीर अल मोमिनीन ज़यनतल खिलाफा व मा ज़ानत का, अली आपने इस खिलाफत को जीनत बख्शी है, इस खिलाफत ने आपको जीनत नहीं बख्शी। या अमीर अल मोमिनीन ज़यनतल खिलाफा व मा ज़ानत का व रफ़अतहा व मा रफ़अत का, आपने इसके मकाम को बुलंद किया है, इसने आपके मकाम को बुलंद नहीं किया। व हिया अहबजो इलैका मिनका, अली इस मसनद को आपकी जरूरत थी, आपको इस मसनद की जरूरत नहीं है। अलबत्त ये हक जो है ज़ाहिरी खिलाफत ये भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक है, और हम इस हक के छिंजाने के ऊपर भी एहतजाज करते हैं, दैरत आशूरा के अंदर भी इसके ऊपर एहतजाज है कि हम उन लोगों के ऊपर उनसे बरात का इजहार करते हैं कि अज़ालतकुम अन मरातिबकुमुल्लती रतबकुमुल्लाहु फीहा, कि जिन्होंने आपको उन मरातिब से हटा दिया जिस पर खुदा ने रखा था। ये जो मानवीय मकाम है, जो मानवीय मरातिब है, इसे छीना नहीं जा सकता, इल्म को छीना नहीं जा सकता, क़ुर्ब खुला की जो मंजिल है, जो वास्ता फैज है, उसे छीना नहीं जा सकता। तो ज़ियारत आशूरा में जब यह कहा गया कि जिन्होंने उन मरातिब से हटा दिया कि जिस पर खुदा ने आपको रखा था, तो इसका मतलब यह है कि वही जाहिरी हुकूमत जो आपका हक थे आपसे छीन लिया गया। तो यह जाहिरी हुकूमत भी अहले बैत का हक है, किसी और का हक नहीं है, और हम इसके ऊपर एहतजाज करते हैं, और अहले बैत ने इसके ऊपर एहतजाज किया, और यह हक बहरहाल अहले बैत तक मिलेगा, वापस आएगा, पलटेगा अपने महवर के ऊपर। लेकिन असल जो तसव्वुर खिलाफत का और इमामत का हमारे यहाँ पाया जाता है वो इससे बढ़कर है। देखिए आपने सुना होगा, अब दादा दामा ने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं ज़रा तेज़ी से यहाँ मरहले से आगे बढ़ूंगा। لیکن میں آپ کی اجازت سے چند روایتیں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آمادہ ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں باواز بولا صلی اللہ علیہ محمد. لیکن آپ نے ان الفاظ کو سنا ہوگا، تکوین اور تشریح. کبھی کبھی اس طریقے سے ہے کہ یہاں جاتا ہے عالم تکوین عالم تشریح. تکوین یعنی وہ طریقہ کہ جس طریقے سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے اندر جو ہے دوسرے انسانوں کا عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے اس میں کچھ طلب نہیں کیا، مجھ سے آپ سے کچھ مانگا نہیں. اللہ نے اس کائنات کو جس طریقے سے بنایا گیا، یہ اللہ کا جو ہے وہ تکوینی فعل ہے، خدا کا عمل تکوینی ہے. یعنی خدا نے جس طریقے سے زمین و آسمان کی گردش بنائی، سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب کے اندر ڈوبتا ہے، یہ خدا کا تکوینی فعل ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کی خلقت میں تکویناً جب اس کائنات کو جب خلق کیا ہے، تو اس پوری کائنات کی خلقت کے اندر واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی اللہ نے تکویناً اس پورے نظام کو اہل بیت کے تابع بنایا ہے، یعنی اہل بیت کی اجازت سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام. اگر کسی کو کچھ بھی مل رہا ہے، کچھ عطا ہو رہا ہے، اگر زمین چل رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، اگر جو ہے وہ یہ آسمان گھوم رہا ہے، یہ سورج حرکت کر رہا ہے، تو یہ سب کے سب اہل بیت کی اجازت سے. یہ ظاہری نظام اور اس کے علاوہ یہ تمام جو مانوی نظام ہے، یہ سب اہل بیت کے تابع ہے. یہ جو میرے مولا نے فرمایا کہ ینحدر عن السیل، میں ہوں کہ جس سے سیل، جس سے جو ہے وہ چشمے پھوٹتے ہیں. ولا یرقی الی الطیر، اور پرندے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے. نہج البلاغہ میں مولا کا یہ جملہ ہے، تو علماء نے اس کی تفصیل کے اندر اس طریقے سے لکھا کہ بہرحال یہ ہر فضیلت کا چشمہ جو ہے وہ علی سے پھوٹتا ہے. لیکن اگر اور زیادہ اس کو دقیق دیکھیں تو در حقیقت وجود کا سر چشمہ اہل بیت سے پھوٹتا ہے. یعنی اگر کائنات کے اندر وجود بٹ رہا ہے، اگر حیات بٹ رہی ہے، اگر یہ زمین و آسمان باقی ہیں، تو یہ فیض ہے محمد و آل محمد کا. بِکُم یُنَزِّلُ الْغَیْث، آپ کے ذریعے سے بارش برستی ہے، آپ کے ذریعے سے یمسک السماء، آسمان ٹھہرا ہوا ہے. جو کچھ بھی کسی کو مل رہا ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے مل رہا ہے. اسی لیے جو ہم بعض دفعہ سنتے ہیں کہ اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا تو جو سہارا اتر آیا، اس کی جرت نہیں ہے کہ علی کے حکم سے سر پیچی کر سکے. اللہ نے اس کی غلامی کی سند علی کے ہاتھ میں دی ہے، جرت نہیں ہے، مجال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تابع بنایا اس پوری کائنات کو، اہل بیت کے تابع بنایا ہے. اور اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ حتیٰ وہ لوگ بھی کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے، اگر وجود انہیں عطا ہو رہا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے عطا ہو رہا ہے. مگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ واسطہ کٹ جائے تو روایات کے اندر اس طریقے سے متعدد روایات ہیں، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، لساقت زمین تباہ ہو جائے. زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ وجود جو ہے وہ اسی ذریعے سے آ رہا ہے، بالکل اس طریقے سے کہ جو اگر مین کنیکشن اگر کہیں سے کٹ جائے، تو یہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ پنکھے، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب سب کے سب کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، اور سب کے سب جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے یہ خدا کا تکوینی نظام ہے، اس میں اس نے مجھ سے اور آپ سے کچھ نہیں چاہا. ہم چاہے اسے پسند کریں یا پسند نہ کریں، کوئی اس سے خوش ہو یا اس سے جلے، اللہ نے تکوینہ نے اس نظام کو اسی طریقے سے بنایا. لیکن تکوین کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلہ ہے، تشریح کا مرحلہ. तशरी का मरहला क्या है? तशरी का मरहला वो है कि जहां पे अल्लाह ने इंसानों से इख्तियार के जरिए कुछ मांगा है, यानी अल्लाह ने ये जो दीन की तरफ आने के लिए कहा है, नमाज पढ़ने के लिए कहा है, ये भी हुक्म खुदा है। सूरज का निकलना भी हुक्म खुदा है, लेकिन वो तकवीनन हुक्म खुदा है। नमाज पढ़ो ये भी हुक्म खुदा है, लेकिन ये खुदा का हुक्म तशरीई है, यानी इसमें इंसान का इख्तियार है। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं अपने इख्तियार से ना चाहूं तो नमाज को ना पढ़ूं। परवरदिगार आलम ने देखिए जिस तरीके से तकवीनन इस पूरी कायनात को अहले बैत के ताबे बनाया है, इंसानों का इम्तिहान इसमें रखा है कि देखो तुम्हारा इम्तिहान ये है कि तकवीनन तो सब कुछ इनके कब्जे में है, तुम्हारा इम्तिहान ये है कि अपने इख्तियार से इनके सामने झुक जाओ, समझ कर शऊर के साथ इख्तियार के साथ यहां पर आ जाओ और आकर अपनी जमीन को झुका दो। यह है विलायत तशरी जो अहले बैत के पास है। विलायत तकवीनी यानी वही के कायनात के ऊपर जो इख्तियार अल्लाह ने दिया है वो विलायत तकवीनी है, और ये जो लोगों को बुलाया है इस दर पे आओ और यहां पर आकर तस्लीम हो जाओ, कि ये जो कोई भी किसी मरहले तक पहुंचा है तो वो इसी तरीके से पहुंचा है, जो जितना ज्यादा तस्लीम हुआ है कि जनाबे सलमान के लिए है, कि सलमान को सलमान बनाया इस चीज ने है कि सलमान का फेल नहीं बल्कि सलमान की ख्वाहिश भी अली के ताबे है। जिस तरीके से अहले बैत कहते हैं कि हमारी रजा कुछ नहीं है जो अल्लाह की रजा है, जो अहले बैत में ढल गए हैं वो कहते हैं कि सलमान की जबान से पूछे सलमान क्या चाहते हो, तब मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय उसके के जो मेरे मौला चाहता है। ये इख्तियार से अपने इख्तियार से आओ और यही इम्तिहान है। देखिए मैं चंद रिवायतें आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं, अब क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, एक दो रिवायतें बस पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊं। पांचवें इमाम से ये रिवायत है, इस पर गौर करिएगा। मौला फरमाते हैं, देखिए जब बात हमारी क्या थी, बंदगी का और इमामत का रब्ता। قال علي ابو جعفر, अबू जाफर यानी पांचवें मौला फरमाते हैं कि इन्नमा याबुदुल्लाह मन यारिफुल्लाह, कि इन्नमा कलमा हसर है कि अल्लाह की इबादत फकत और फकत वो करते हैं कि मन यारिफुल्लाह जो अल्लाह को पहचानते हैं। फअम्मा मन ला यारिफुल्लाह फइन्नमा याबुदुहु हाकज़ा ज़लालन, और जो अल्लाह को नहीं जानते वो इसी तरीके से गुमराही के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी भाई शायद अपने गुमान में इबादत कर रहे होते हैं लेकिन उनकी इबादत दर हकीकत गुमराही के सिवा कुछ और नहीं है। कुल तो जोइल तो फिदा, तो मैंने कहा कि मौला मैं आप पर फिदा हो जाऊं। फमा मारिफतुल्लाह, बस अल्लाह की मारिफत क्या है? तो फरमाया कौला तस्दीकुल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, कहा कि मारिफत का सबसे पहला मरहला क्या है? अल्लाह की तस्दीक, व तस्दीको रसूले, और अल्लाह के रसूल की तस्दीक, व मुवालातो अलीयन वल एहतमामो बिअइमतिल हुदा, और अली की मोहब्बत का इकरार, इमामत का इकरार, और उसके बाद जितने आइमा है सब की इमामत का इकरार, वल बराअतो इलल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मिन अदुविहिम, और इनके दुश्मनों से बराअत का इजहार। का हाकज़ा युरफुल्लाह, इस तरीके से अल्लाह पहचाना जाता है। अगर अल्लाह को पहचानना है कि अल्लाह की इबादत के लिए पहचानना शर्त है तो यहां तक आओगे तो अल्लाह को पहचान पाओगे। हाकज़ा युरफुल्लाह बाबे, मैं आपको बस कोड दे दूं, यानी आपको मैं एड्रेस दे दूं, जो उसूल काफी है इसके अंदर एक किताबुल हुज्जत है, उस किताबुल हुज्जत के अंदर 30 से ज्यादा जो है वो अबवाब है, और हर बाब के अंदर मुतअद्दिद हदीसें हैं इमामत के बाब में। मौला कायनात से और इस हदीस को नकल किया है छठे इमाम ने, लेकिन नकल किया है किससे? मौला कायनात से। कि मौला कायनात के पास एक शख्स आया और उसने आके मौला से सवाल किया कि ये जो कुरान के अंदर है कि वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम, कि वो जो मकाम आराफ है वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको सबकी शक्लों से जानते हैं, पहचानते हैं। तो मौला से जब सवाल किया इस आयत के बारे में तो मौला ने फरमाया फकाल नहनो अलल आराफ, हम हैं कि जो उस मकाम पर हैं, नारिफो अंसारना बसीमा हम, हम अपने चाहने वालों को उनके चेहरों से पहचानते हैं और हम उन्हें भी जानते हैं कि जो अल्लाह को नहीं पहचानते उन्हें भी उनके चेहरों से पहचानते हैं। और फरमाया कि अज़्ज़ा वजल्ला ला युअरफुल अज़्ज़ा वजल्ला इल्ला बिसबीले मारिफतेना, अल्लाह की मारफत हासिल नहीं हो सकती मगर हमारी मारफत के जरिए से। और फरमाया नहनुल आराफ युअरफुनुल्लाह, हम वही आराफ हैं जिसको अल्लाह ने इसके अंदर कुरान के अंदर जिनके बारे में तस्किरा किया है, वला फला यदखुलुल जन्ना इल्ला मन अरफना, जन्नत में वो कोई दाखिल नहीं हो सकता मगर वो कि जो हमें जानता हो, वह अरफना हो और हम उसको जानते हो, वला यदखुलुन नारा इल्ला मन अनकरना वह अनकरना हो, और कोई जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा मगर ये कि वो हमारा इनकार करने वाला हो और हम उसका इनकार करने वाले हों। और फरमाया कि अगर लौ शाअ लअर्रफल इबाद नफ्सहु, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह किसी और तरीके से भी अपनी मारफत करवा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने जालना अबवाबहु वसिराता, अल्लाह ने हमें बाबुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हमें सिराते मुस्तकीम बनाया, वसबीलहु और हमें अपना रास्ता बनाया, और हमें वल वजहुल्लजी युक्ता मिनहु, और हमें वो वसीला बनाया कि जिसके जरिए से अता होता है और जिसके जरिए से कबूल किया जाता है। ये मासूम के अल्फाज हैं। मेरा चंद एक रिवायतें और भी थी लेकिन उसको तरफ नजर करते हुए कि जिसके अंदर इसी चीज की तरफ इशारा है कि मासूम ने फरमाया कि इलाहा होना तौहीद, तौहीद जो है वो यहां तक है यानी इमामत तक। चंद एक जुमले इसके राज के बारे में अर्ज कर दूं कि देखें इसका राज क्या है, सिर क्या है, क्यों इस तरीके से है कि जो अहले बैत को नहीं मानता, जो इस दर पर नहीं आता, परवरदिगार आलम उसे कबूल नहीं करता। खुद कुरान के अंदर इसकी तरफ इशारा है कि परवरदिगार आलम ने जो पहला इम्तिहान लिया वो अपने सामने सर झुकवा कर नहीं लिया बल्कि अपने वली के सामने तस्लीम के जरिए से लिया। कुरान ने क्या कहा, وَاسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, जब हमने मलाइका से कहा कि सजदा करो आदम के लिए, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, और सब ने सजदा किया सवाए इबलीस के, अबा वास्तकबरा, उसने रुख मोड़ लिया और अपने आप को बड़ा जाना। फिर खुदा ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, आज ये बात आश्कार हो गई कि ये कभी भी हमारा बंदा नहीं था, ये काफिर था शुरू से। वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से था, यानी ये जो सजदे कर रहा था वो बंदगी के सजदे नहीं थे बल्कि अनानियत के सजदे थे। अगर अल्लाह को मानना है, उसके सामने सर झुकाना है, तो उसका तकाजा ये है कि उसको जिसने बनाया है यानी जिसको अल्लाह ने बनाया है उसके सामने आकर सर को झुका दो, यही बंदगी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो कुछ भी है वो अनानियत है, बंदगी नहीं है। अल्लाह मसल्ला अला मोहम्मद, यानी अल्लाह के बनाए हुए को मानना दर हकीकत अल्लाह की बंदगी का इकरार है। अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसे नबी बनाए किसे इमाम बनाए। अल्लाह के बनाए हुए के सामने झुक जाना ऐन बंदगी है, और अगर उसके सामने आकर खड़े हो गए तो वो कहा नाम है अल काफरीन, तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह के सामने तस्लीम ही नहीं हो। और दीन सारा का सारा दीन जो है वो तस्लीम और बंदगी का नाम है। बस हमारे यहां जो तसव्वुर है कि जहां से मैंने बात शुरू की थी कि इमामत और तौहीद के अगर रब्त को देखें तो दर हकीकत हमारे यहां इमामत इस तरह से है कि उसको मानना दर हकीकत अल्लाह की बंदगी का इकरार है और उसके सामने आ जाना, वलिय खुदा के सामने आकर खड़ा हो जाना यह कुफ्र है। ये खाली उसका इंकार नहीं है बल्कि उसके बनाने वाले का इंकार है। ये बंदगी से मुंह मोड़ लेना है, ये आईन बंदगी है। अहले बैत के सामने तस्लीम हो जाना क्योंकि परवरदिगार आलम ने यह मकाम इन्हें अता किया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। सिर्फ तो जब आपके सामने बयान किया तो फिर वो बातें भी समझ में आती हैं कि वो जो ज्यारत के जुमले हैं कि मेरे मौला, एक शअरत अज़लतुल अर्श, हुसैन आपकी शहादत से अर्शे इलाही लरजने लगा। और एक और मकाम पर है कि हुसैन ये आपके खेमों को नहीं लूटा गया, ये इस्लाम की हुरमत है जिसे पामाल किया गया है। ये आलुल्लाह है, ये खलीफतुल्लाह है, ये मादन और रिसाला है। इन्हीं की मारफत और इन्हीं के हुक्म की इताअत के जरिए अल्लाह की इताअत होती है। पसादारा ने मसलूम आज दूसरी मुहर्रम है। हमारे यहां बर्र सगीर का तरीका यह नहीं है कि बहुत ज्यादा मसाइब को खोल कर बयान किया जाए। हमारी जो तरीक़ाकार जो हमारा था वो ये था कि हमारे यहाँ इशारों में गुफ्तगू होती थी और जहन वहां तक पहुंच जाते थे। क्या रोने के लिए ये काफी नहीं है कि आज जमाने के इमाम रो रहा है? आज ज़ैनब गिरिया कुना है। मुकद्दस अर्दबेली ये फकीह है बुजुर्ग, जब करबला आते थे तो चार फरसख पहले अपने जूते उतार लिया करते थे और जब तक करबला में रहते थे सोते नहीं थे। एक दफा करबला में आग लगी, चीख मार कर उठे, कहा कि जैसे ही आग लगी मेरे कानों में किसी बीवी के रोने की सदाएं आ गई। हुसैन की मां गिरिया कुना है, क्या ये बात रोने के लिए काफी नहीं है? और हमारे फरहंग ये भी है कि वो जो उस तरीके से मरसिया होता है मसाइब भी उसी तरह से पढ़े जाते हैं। आज हुसैन के एक भाई का तस्करा हुआ है। किसका तस्करा हुआ है? हुसैन के भाई का तस्करा हुआ। वो कि जिसे हुसैन ने जब भेजा है तो जो खत में सबसे पहले लिखा है कि मैं किसे भेज रहा हूं, तो सबसे पहला जुमला यह लिखा है, ए कूफे वालों जान लो हुसैन अपना भाई तुम्हारी तरह भेज रहा है। तारीख ने बहुत सारी जगह पर अल्फाज को नकल किया मगर लहजे को नकल नहीं किया। वो के जिसे हुसैन ने अपना भाई कहा है, जब मुस्लिम को रुखसत किया होगा, गले से लगाया होगा, क्या मोहब्बत का अंदाज होगा। ऐ मेरे भाई मुस्लिम, जाओ हुसैन की नुमाइंदगी में कूफे चले जाओ। और उसके बाद कहा कि वो है कि जो मुतमदी व मुसकती, वो है कि जो मेरा काबिल एतमाद है, अगर उसके हाथ पर तुमने बैयत की तो गोया ऐसा है कि हुसैन के हाथ पर बैयत की। अगर मुस्लिम ने लिख दिया हुसैन आ जाए तो हम आ जाएंगे। कितना भरोसा है हुसैन को, कितना एतमाद है कि सब जो कह रहे हैं कि हुसैन कूफे न जाइए, जनाबे हमने अब्बास सब मना कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ने ये कहा अगर मुस्लिम ने कह दिया तो हम आ जाएंगे। मुस्लिम पहुंचे हैं और उसके बाद हुसैन का खत को पेश किया। लोगों ने बैयत करना शुरू की। जैसे जैसे बैयत करते जाते हैं उससे मुस्लिम खुश होते जाते हैं कि मेरे मौला के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, हुसैन का लश्कर बढ़ता जा रहा है। 18,000 से ज्यादा तादाद पहुंची, मुस्लिम खुश हुए, मौला को खत लिखा, मौला कूफे आ जाइए। और उसके बाद वो मरहला आया कि जब इब्ने ज़ियाद दाखिल हुआ, एक एक करके मुस्लिम का साथ छोड़ना शुरू किया, मुस्लिम तनहा होना शुरू हुए। एक वक्त वो आया कि अब कूफे की गलियों में मुस्लिम तनहा है। एक घर की दहलीज पर बैठे ज़ईफ़ा ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद कहा, ए जवान यहाँ पर ना बैठो, कूफे का माहौल सासगार नहीं है, जाओ अपने घर चले जाओ, कूफे में ऐसा आना आसान नहीं है। मुस्लिम ने तड़प कर कहा, अरे वो जिसका कोई घर ना हो वो क्या करे। वो मोमिना जब उसे पता चला कि मुस्लिम कौन है, अपने घर के अंदर जगह दी, उन तमाम मराहिल को छोड़ते हुए कि जब पता चला, जब फौजें आना शुरू हुई तो तारीख ने लिखा, उस खातून ने यह कहा कि मुस्लिम आप घर के अंदर रहे, यहाँ पर रहकर ज्यादा अच्छा दिफा कर सकते हैं। लेकिन इस मुस्लिम ने तड़प कर कहा कि देखो, मुस्लिम ने जवाब दिया, देखो चाहे जल्द भैया बदेर ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से इन नामहरमों के कदम तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो जाए। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया, दारुल अमारा पर लाया गया। उसके बाद जब सलाम करने की बारी आई तो कहा कि मुस्लिम सलाम करो, मुस्लिम ने कहा कि मुस्लिम सिवाय हुसैन के किसी अमीर को नहीं जानता। माली अमीरों ने लड़ हुसैन, अगर मुस्लिम का कोई अमीर है तो फकत हुसैन है। दारुल अमारा पर ले जाया गया, एक चंद बातों की ख्वाहिश की, एक पानी तलब किया, एक ये कहा कि उमर साद मलऊन से कि मेरी जरा बेच कर मेरे कर्ज को अदा कर देना, और फिर तीसरी ख्वाहिश ये की कि मेरे मौला रास्ते में है, मेरे मौला को खबर कर देना कि कूफे वालों ने वो वाली की। जब मुस्लिम ने पानी मंगवाया, पानी पीना चाहते हैं, होठों पे जख्म है, खून बहना शुरू हुआ, सारा पानी खून में थर हो गया। मुस्लिम ने वो पानी फेंक दिया, फिर पानी मंगवाया, फिर खून से वो कासा तर हो गया। तीन दफा पानी मंगवाया, जब पानी खून से भर गया तो मुस्लिम ने कहा कि मुस्लिम का खुदा ये चाहता है कि मुस्लिम प्यास की हालत में उसके पास।
बस दो तीन जुमले और सुन लीजिए, का खुदा ये चाहता है, हाँ मुस्लिम तुम्हारा खुदा यही चाहता है कि प्यास के आलम में उससे मुलाकात करो, क्योंकि अगर आज पानी पी लिया तो जब कर्बला में हुसैन की प्यास का मरहला आएगा, अज़र की प्यास का मरहला होगा, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। खुदा नहीं चाहता मुस्लिम तो हुसैन से
ये उसका लुत्फ है, हुसैन के सामने शर्मिंदा हो। हुसैन अगर प्यासे गए तो तुम भी प्यासे दुनिया से जाओ। शहीद किया गया, लाशे को जमीन पर फेंका गया। अगर यहाँ पर मकातिल ने नहीं लिखा, लेकिन अहले दिल ने ये कहा कि जब मुस्लिम जमीन पर आए हैं तो कोई आया हो या ना आया हो, हुसैन की माँ जरूर आई होगी। सीन से जमीन बनाते हुए हुसैन को गोद में लिया था, मुस्लिम को तन्हा नहीं छोड़ा होगा। ए मेरे लाल मुस्लिम, ये मार गए। आखिरी जुमले, जब मुस्लिम की शहादत की खबर आई तो हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा को बुलाया। हुसैन की मामू भी है, ये बच्ची हुसैन की भांजी है। जानू पर बिठाया, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरना शुरू किया। अहले बैत के घर की पली हुई बच्ची थी, आज जो ये अंदाज देखा, तड़प कर कहा, मामू मेरे बाबा की तो खैर है ना। हुसैन ने कलेजे से लगाया, कहा है मेरी बेटी, आज से तेरा बाबा हुसैन है। अरे एक मंजर यह था, जब एक बच्ची यतीम हुई, एक मंजर करबला में है, एक बेअशाए बेसर है, एक 3 साला यतीमा खुद को लाश पर गिराया, कोई ताजिया ला लेगा।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.